ॐ अज्ञानविरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं सह श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामने। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत भक्ति विधान स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय नूतने श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामने। श्री वार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाबधे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वान्तहारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 26 दिसंबर को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका तिरोहा दिवस है, तो उनके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, है ना। तो जब हम शिल प्रभुपाद जो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं और उन्होंने किस तरह से प्रचार किया, जब वो देखते हैं, खासकर प्रभुपाद लीलामृत है या उनकी जो भागवतम है उसको जब देखते हैं पढ़ते हैं, तो मन में एक विचार आता है कि ये जो इतने महान शुद्ध भक्त हैं इनको किन्होंने बनाया, है ना, इतने महान कैसे बने। एक्चुअली शिल प्रभुपाद तो शुद्ध भक्ति हैं, वो वैकुंठ से गोलोक वृंदावन से आए हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि वो इतने महान हैं, इतने कम समय में इतने सारे पुस्तकों का प्रकाशन, इतने सारे मंदिरों की स्थापना और पाश्चात्य जगत में प्रचार, जो कि एक कल्पना है, जो कल्पना थी या एक स्वप्न था कि कैसे संभव है कि जो मिलेच्छ हैं, है ना, जिनको शुद्धता के कुछ भी नियम नहीं पता है, जो वैदिक संस्कृति से बहुत 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 दूर है, उनको वैष्णव बनाना, वैष्णवी नहीं, जो वैष्णव सदाचार के सारे नियम हैं, धोती कुर्ता तिलक सब कुछ वो पालन कर रहे हैं और सड़कों पर मृदंग करताल के साथ नाच रहे हैं, तो ये जो एक जादू है, करिश्मा है ना, वो किन्होंने किया, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद ने। तो जब हम प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि इनको किन्होंने बनाया, इनके कौन गुरु हैं, है ना। तो जो शिष्य हैं अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपने प्रचार के द्वारा वास्तव में गुरु का गुणगान करते हैं, है ना। शिष्य की अपनी कोई व्यक्तिगत योग्यता नहीं होती है, है ना। शिष्य का एकमात्र कर्तव्य क्या है कि अपने गुरु को, जो गुरु भगवान की सेवा कर रहे हैं उसमें उनको असिस्ट करना, यही एक शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है, है ना। शिष्य का अपना कोई पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है, कोई पर्सनल कोई प्रोजेक्ट नहीं है, है ना, पर्सनल कोई सेवा नहीं है, वो केवल एकमात्र उसका क्या है कि जो गुरु सेवा कर रहे हैं अपने गुरु की, उसमें वो उनको असिस्ट करे, है ना, उनका सहायक बने। एक्चुअली असिस्ट नहीं, असिस्ट भी एक शब्द सही नहीं है, सेवा करके उसका खुद का ही भला हो रहा है, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ मूवमेंट का भला हो रहा है या गुरु का भला हो रहा है, वो सेवा करके उसका खुद का भला हो रहा है, है ना। तो उसी तरह जो शिल प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है उनका सबसे बड़ा योगदान क्या है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, शिल प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, वो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना। तो जैसे एक पुत्र होता है, पिता का क्या होता है, विस्तार होता है, एक्सपांसन होता है, उसी तरह शिष्य जो होता है अपने गुरु का क्या होता है, विस्तार होता है, एक्सपांसन होता है। तो जो क्वालिटीज पिता में होती हैं वही क्वालिटीज किस में होती है, पुत्र में होती है ना। उसी तरह जो क्वालिटीज गुरु में होती हैं वो स्वाभाविक क्वालिटी किस में आती है, अगर वो वास्तव में शिष्य है तो वो स्वाभाविक रूप से वो शिष्य में वो क्वालिटीज आना प्रारंभ हो जाती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका जो तिरोभाव वो कब हुआ, 1 जनवरी 1937 है ना, 1 जनवरी 1937 में। और उनका प्राकट्य कब हुआ, उनका आविर्भाव कब हुआ, 1874 में है ना, 1874 में उनका आविर्भाव हुआ, 1937 में उनका तिरोभाव हुआ। हम बोल सकते हैं उनके पिता केदारनाथ दत्त थे, वो अपने पिता के 5वीं संतान थे है ना। यहाँ उनका जन्म हुआ, मायापुर के पास में एक जगह है, नाम मैं भूल गया, वीर नगर कोई जगह है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जन्म तो जगन्नाथपुरी में हुआ था, भक्ति विनोद ठाकुर का वीर नगर में हुआ था। तो ये सब जान के हम उनके बारे में नहीं जान पाएंगे, तो क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है। जैसे एक बायोग्राफी में पढ़ते हैं ना, महात्मा गांधी का जन्म यहाँ हुआ था, महात्मा गांधी की मृत्यु यहाँ हुई थी, इस सन में महात्मा गांधी पैदा हुए थे, इस सन में मर गए, है ना। तो ये तो क्या है, एक केवल एक इन्फॉर्मेशन है। और जनरली क्या है, लोग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पसंद करते हैं, नॉलेज कम पसंद करते हैं, है ना, कि कितनी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, उससे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। लेकिन हम जो आचार्य हैं, ये शिल प्रभुपाद हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर हैं, उनको कैसे समझ सकते हैं, उनकी शिक्षाओं के द्वारा, है ना। उनकी शिक्षाओं को जाने बिना, केवल उनके बारे में एक ऊपर से कुछ हमारे इन्फॉर्मेशन है, कुछ सूचना है, तो बस एक औपचारिकता हो गई, फॉर्मेलिटी हो गई, है ना, कि हमको ही पता है ना। ऐसे अलग अलग जो आत्म बायोग्राफीज होती हैं, वैसे एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी हैं, एक प्रभुपाद भी है, उनकी बायोग्राफी वो पढ़ ली, बस अब बात खत्म, अभी हम दूसरी पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे जो महान भक्त हैं, वो इस ब्रह्मा जी के एक दिन में वो एक या दो ऐसे भक्त आते हैं बस, इस स्तर के और इतने महान जो भक्त हैं वो केवल 1-2-3 ऐसे भक्त आते हैं बस, उससे ज्यादा नहीं आते हैं, है ना। और ऐसे भक्तों का जो आविर्भाव और तिरोभाव होता है, वो वास्तव में तिरोभाव होने के पश्चात भी भगवान की सेवा में चले जाते हैं, और आविर्भाव होने से पहले भी भगवान की सेवा में लगे होते हैं। बस आविर्भाव और तिरोभाव के बीच में जो समय है, केवल वो हमको दिखाई देता है, वो मैनिफेस्ट होता है, वो प्रकट होता है, उससे पहले भी वो सेवा में है, इसके बाद में भी सेवा में है ना। कुछ समय इस पृथ्वी पर धरा नाम पर हमको वो ऐसे हमको प्रकट रूप में दिखाई देते हैं, है ना। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो गुरु होते हैं वो सत्यावेश अवतार है ना। सत्यावेश अवतार कौन है, कि जो जीव होता है तो जीव में भगवान शक्ति प्रदत्त करते हैं, एम्पावर्ड करते हैं, जिससे वो प्रचार करते हैं ना, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। तो गुरु को कभी कभी सत्यावेश अवतार बोला जाता है। और गुरु शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त के रास्ते पर हैं, शुद्ध भक्त होते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर है वो सत्यावेश अवतार से भी ऊपर है, वो शुद्ध भक्त से भी ऊपर है। और वो क्या है, भगवान की स्वयं अंतरंगा शक्ति है ना। वो शुद्ध भक्त से भी ऊपर है वो, वो क्या है, पार्षद है वो, है ना, एसोसिएट। तो जब भक्ति से शिल भक्ति विनोद ठाकुर जब जगन्नाथपुरी में थे तो वहाँ पर वो मजिस्ट्रेट थे और मैनेजमेंट सारा संभालते थे मंदिर का। तो एक बार जगन्नाथ जी स्वप्न में आए भक्ति विनोद ठाकुर के, और उन्होंने बोला कि मैंने तुमको यहाँ पे लाया था कि तुम मेरा प्रचार करोगे और तुम ये सब मजिस्ट्रेट के उसमें लगे हुए हो मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट तो मंदिर का कर रहे थे, मजिस्ट्रेट के उसमें पूरा लगे हुए हो तुमने, मैंने तुमको यहाँ प्रचार के लिए बुलाया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि अभी मैं क्या करूँ, मैं अकेले कैसे करूँगा, आप अपना कोई पार्षद भेजिए, अपना कोई एसोसिएट भेजिए, तो मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं प्रचार कर पाऊँ, तो आपका कोई एक अंतरंग पार्षद है ना, जो एसोसिएट इंटरनल एसोसिएट्स है उसको भेजिए, तब मैं प्रचार कर पाऊँगा। तो फिर उन्होंने बोला कि पीछे एक बिमला देवी का मंदिर है, वहाँ पर जाके आप प्रार्थना करो तो जरूर तुम्हारी प्रार्थना जो है सुनी जाएगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनसे बिमला देवी से प्रार्थना करते हैं और बाद में शिल भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर उनके घर में प्रकट होते हैं, जो जगन्नाथ जी के क्या है, पार्षद है ना, एसोसिएट है। तो वो शुद्ध भक्त नहीं है, सत्याभिसवतार नहीं, शुद्ध भक्त से भी ऊपर है, अंतरंग भक्त है, है ना। तो उनकी जो बायोग्राफी, बायोग्राफी को क्या बोलेंगे हिंदी में, आत्मकथा तो ऑटोबायोग्राफी होता है, जीवनी है ना। उनकी जो जीवनी है उनके शिष्यों ने लिखी है, जिसका नाम है सरस्वती जयश्री, है ना। और ये जो सरस्वती जयश्री है उसमें बार बार इस चीज पर जोर दिया गया है कि कहीं हम भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर को एक साधारण पुरुष या एक महान पुरुष ना समझें, वो बहुत 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 महान है, अंतरंग पार्षद है। तो बार बार इस चीज पे जोर दिया गया है ना, मर्त बुद्धि नहीं आ जाए। मर्त बुद्धि क्या होती है कि एक व्यक्ति है, एक साधारण व्यक्ति है, और उसने साधना के द्वारा, अपने तप के द्वारा भक्ति की एक उच्च अवस्था में पहुंच गया है ना, साधारण है, थोड़ा सा महान है, तो वो मर्त बुद्धि नहीं आ जाए ना। आचार्य मिजानियान नाम मन्नेत करहेचित ना मर्त बुद्धि सुएत सर्वदेव मयो गुरु, है ना। तो आचार्य है उनमें क्या होना चाहिए, मर्त बुद्धि नहीं आना चाहिए। जैसे विग्रह है, तो विग्रह में क्या कैसे जाते हैं, ये तो पत्थर है ना, ये गंगा नदी क्या है, केवल एक पानी है। ऐसे आचार्य क्या, एक व्यक्ति है, महान पुरुष है। तो जैसे विग्रहों को केवल पत्थर समझना अपराध है, गंगा नदी को केवल पानी समझना अपराध है, ऐसे महान आचार्य को केवल एक साधारण, एक महान पुरुष समझना वो भी क्या है, अपराध, क्योंकि वो मर्त बुद्धि आ जाती है। तो बार बार, और सरस्वती जयश्री है उसमें बताया गया है कि श्री भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर का जीवन ऐसा है कि अगर किसी ने कोई भी शास्त्र नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं आता, पूरा मूर्ख है वो, अगर केवल उनके जीवन के बारे में पता है तो वो शास्त्रों का सारा मर्म जान जाएगा, शास्त्रों का सारा एसेंस जान जाएगा, क्योंकि उनका जो जीवन है, उनका जो भक्ति इतना तीव्र है ना, इतना रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है, अगर उसको ही कोई पढ़ता है और उसको ही एक्चुअली उसको पालन ही नहीं कर पाएगा। हम अभी पढ़ेंगे उनके जीवन के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में, एक्चुअली समझ में आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, पहले तो समझ में नहीं आएगी, चल के आना है, और समझ के पालन करना तो बहुत ही बड़ी, बहुत बड़ा हो गया है ना। और जैसा उन्होंने किया वो तो हमारे बस की बात नहीं है, है ना। शिल प्रभुपाद अपने प्रवचनों में बताते थे कि मैं अपने गुरु महाराज से 90% लीनियंट हूँ, है ना। लीनियंट को क्या बोलेंगे, 90% मैंने छूट दे रखी है ना, ढील दे रखी है 90%। तो अभी वही प्रभुपाद जी के जो आदेश हैं उसी को पालन करने में, उस वही हमसे पालन नहीं हो रहे। उन्होंने 90% छूट दे दिया, लीनियंसी है, वही हमसे पालन नहीं हो रहे। तो अगर भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर के समय पर अगर हम होते तो इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल है हम भक्ति कर पाते, क्योंकि उनकी जो तीव्रता है वो इतनी तेज है ना, वो उसको हम सहन नहीं कर पाते, है ना। ऐसे अभी जो नियम है, सुबह उठना है, 4 बजे उठना है, मंगला आरती है, फिर जप है, भागवतम क्लास है ना, और फिर सेवा है, तो वही क्या है, वही इतना भारी लगता है कि अगर कैसे हो जाएगा, ये समस्या वो समस्या, इतना भारी लग रहा है ना। तो अभी इसलिए प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया कि 2 घंटे जप का टाइम मिलेगा, 5:15 से 7:15, लेकिन जो भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर उनके टाइम पे ऐसे कोई जप का टाइम फिक्स नहीं था, बस मंगला आरती हुआ, सेवा चालू, आपको टाइम निकालना है, निकालो कहाँ से टाइम निकालो, और पूरी तरह से पैक सेवा से 11-12 बजे सो रहे हैं, सुबह उठना है 3:30-4 बजे। वो स्वयं 4-4.5 घंटे सोते थे, उनके शिष्य भी है ना इसी तरह से वो पालन करते थे ना। तो जब का समय नहीं है, और 64 माला करना है, और सेवा भी करना है, अब बताओ क्या कैसे करेंगे, है ना। तो उनकी जो भजन की जो उनकी तीव्रता थी, वो कुछ लोग ही सहन कर पाए, और जो सहन कर पाए वो उनके साथ में रहे, और जो सहन नहीं कर पाए वो चले गए, है ना। ऐसे शिल प्रभुपाद से भी बहुत सारे लोग जुड़े, और कुछ समय जुड़े, अच्छा लगा, और बाद में कुछ कठिनाइयाँ हुई, मन मानसिक समस्याएं मतलब मन डिस्टर्ब हुआ, तो छोड़ के चले गए। और भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर के टाइम पे भी उनके कई ऐसे शिष्य थे जो उनको छोड़ के चले गए, क्योंकि उनकी जो शिक्षाएं हैं वो क्या है, वो वैकुंठ से आई हैं, वैकुंठ की भाषा है। तो वैकुंठ की भाषा समझने के लिए एक स्तर का शुद्धिकरण चाहिए, अगर शुद्धिकरण नहीं है तो हम उनकी जो शिक्षा है वो समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो एक स्तर का शुद्धिकरण चाहिए, और ये केवल उनकी शिक्षाएं क्या है, एक इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट से नहीं समझ सकते हैं, है ना, कि बौद्धिक रूप से हम बहुत तेज हैं और शिक्षाओं को समझ लेंगे, पूरा याद कर लेंगे, बस हो गया, यस मैं समझ गया। लेकिन उनकी शिक्षाओं के समझने के लिए क्या चाहिए, कृपा चाहिए, है ना, भक्तों की कृपा चाहिए, महान वैष्णव आचार्यों की कृपा चाहिए। केवल एक इंटेलिजेंस से भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर बोलते थे इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिज्म, है ना, जिम्नास्टिक होता है ना, अलग अलग तरीके से पोस्चर्स होती हैं, उसमें अलग अलग तरह से वो रिंग से निकलते हैं, फिर एक टेबल होती है उसके ऊपर छलांग लगाते हैं, तो ऐसी मानसिक रूप से अलग अलग तरह से एक्सरसाइज करके, जिम्नास्टिक करके उनकी शिक्षाओं को नहीं समझ सकते, है ना। उनकी शिक्षाओं को समझने के लिए क्या चाहिए, कृपा चाहिए, है ना। और कृपा किसको मिलती है, कोई अपने सीक्रेट किसको बताता है, अलग कोई किसी के सीक्रेट है कुछ तो किसको बताएगा, सबको बता देगा अगर वो उससे प्रसन्न है, अगर वो प्रसन्न है, उसके कॉन्फिडेंशियल है, तो वो सीक्रेट अपना खुलासा करेगा ना, सबको तो सीक्रेट नहीं बताएगा। तो उसी तरह आचार्यों की जो शिक्षाएं हैं उसको समझना और उसको पालन करना, उसके लिए क्या है, उसके लिए कृपा चाहिए, है ना। तो आज हम जो एक शिक्षा पढ़ेंगे, और इसी शिक्षा के आधार पर श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर की सारी शिक्षाएं हैं, उनका सारा जीवन है, केवल इस एकमात्र शिक्षा के आधार पर। अगर इस चीज को हम समझ गए, एक्चुअली समझ तो नहीं पाएंगे क्योंकि मैं खुद नहीं समझा हूं, इस चीज को थोड़ा बहुत समझ गए तो बाकी चीज भी समझ सकते हैं, और उनका जीवन कैसा है वो भी समझ सकते हैं, है ना। तो उनकी जो शिक्षा है इसका नाम है सीयर एंड द सीन, है ना, दृग दृश्य विचार, है ना, द सीयर एंड द सीन, दृग दृश्य विचार। तो ये दृग दृश्य विचार क्या होता है, उससे आने से पहले जो दृग दृश्य विचार है उसके बारे में भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने कुछ ऐसे वाक्य बोले हैं जो हमारे चेतना को पूरा घुमा देंगे, उल्टा कर देंगे। भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर कहते थे जो भी एक भौतिकतावादी व्यक्ति सोच रहा है, जो भी कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वो सब गलत है। वो कैसे बैठा है, कैसे चल रहा है, कैसे सोच रहा है, जो कर रहा है, सब कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि उसकी हर क्रिया, हर विचार उसके भोग से उत्पन्न है, क्योंकि बैकग्राउंड में क्या है, भोग है। तो जो भी वो कर रहा है वो सब क्या है, सब गलत है। तो बोलते हैं हम तो बायस्ड है, हम तो पक्ष बायस्ड को क्या बोलते हैं, पक्षपाती। हम तो मान के ही चलते हैं भौतिकतावादी जो भी करता है सब गलत कर रहा है। अभी कोई सोचेगा अरे ये तो कैसे बोल रहे हैं, ये तो कैसे संभव। फिर उनका एक वाक्य है जो हमने कई बार सुना भी है कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसा करो कि भगवान तुम्हें देखने, है ना। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान के दर्शन करने का प्रयास मत करो, ऐसा करो कि भगवान देखने आए कि कौन है ये, कौन ये सेवा कर रहा है ना, उसको हम समझेंगे। फिर उन्होंने बताया, जैसे हम बोलते हैं ये वाक्य सही है कि अगर हम एक कदम लेंगे तो भगवान हमारे तरफ 10 कदम आएंगे, है ना। एक कदम हम बढ़ाएंगे तो भगवान 10 कदम आएंगे। और हम ऐसा ही बताते हैं, नेहा विक्रमो ना सुस्ति प्रत्यवायो ना विद्यते स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, है ना। कि जितना भी हमने भक्ति किया है वो क्या होता है, संचित होता जाता है ना। और अगले जीवन जितना भी हमने भक्ति किया और अगर शेष रह गया तो अगले जीवन में क्या होता है, उसका ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है उसका। तो लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या बोलते थे कि हम जितना भक्ति करेंगे उतना हमारे ऊपर ऋण चढ़ता जाएगा, जितना हम भक्ति करेंगे उतने हम ऋणी होते जाएंगे, है ना। जनरली जो भक्ति में आते हैं वो सोचते हैं कि हम भक्ति इतनी कर रहे हैं तो भगवान हमें ये देंगे, कम से कम मन की शांति तो दे ही देंगे, है ना, या कुछ भौतिक रूप से अच्छा हो जाएगा। या अगर आध्यात्मिक, अगर केवल भक्ति के रास्ते में देखें तो ये आध्यात्मिक रूप से मैं प्रगत हो जाऊंगा, वो सोचना गलत भी नहीं है, या कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, मतलब या हम भगवत धाम चले जाएंगे, तो एक तरह से ये सोचना गलत भी नहीं है। लेकिन उससे भी एक ऊपर एक उच्च सोच क्या है, वो बता रहे हैं कि जितना हम भक्ति करेंगे उतना हम भगवान के ऋणी होते जाएंगे। अब इसको कैसे समझेंगे, ये तो क्या है, चेतना को पलटने वाली सब चीजें हैं। तो बताते थे कि जैसे एक व्यक्ति है, है ना, वो किसी सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, और एक कोई बिजनेसमैन आया और उस व्यक्ति को वहां से उठा के ले गया और उसको घर दे दिया, है ना, कपड़े दे दिए, खाने की पूरी व्यवस्था कर दिया और उसको जॉब भी लगवा दिया। तो वो जितने साल उसके होते जाएंगे कंपनी में, वो ऐसा नहीं बोलेगा देखो मैंने 10 साल सेवा किया है तुम्हारी कंपनी में, है ना, मुझे एक्स्ट्रा कुछ मिलना चाहिए। वो क्या सोचेगा कि जितना वो सेवा करता जाएगा वो कितना उतना ज्यादा ऋणी होता जाएगा, कि देखो मैं 10 साल पहले कैसे था और आज आपकी कृपा की वजह से मैं यहाँ पर आया और अभी मैं यहाँ पर आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो वो जितने उसके साल निकलेंगे वो उतना ज्यादा अपने आप को ऋणी अनुभव करेगा, अगर वास्तव में सही व्यक्ति है तो। तो उसी तरह भक्ति में आने से पहले हमारी क्या स्थिति था, और श्रील प्रभुपाद और जो भक्तों की कृपा से हम भक्ति में आए हैं तो अभी हमारा क्या स्थिति है। तो जितना हम इस चीज को अनुभव कर पाएंगे कि पहले हम क्या थे और आज क्या है, अगर हमें अंतर आया है तो, और जितना हम अनुभव कर पाएंगे उतना हम कितना उतना ज्यादा ऋणी महसूस करेंगे। और ऋण को उतारने के लिए क्या करेंगे, ऋण उतारते हैं, ऋण चढ़ा होता है तो क्या करते हैं, किसी का ऋण चढ़ा है, पैसे चढ़े हैं तो क्या करेंगे, उसको पैसे देंगे। तो ऋण उतारने के लिए क्या करेंगे, और सेवा करेंगे, लेकिन और सेवा करेंगे तो और ऋण चढ़ जाएगा, तो उसको उतारने के लिए और सेवा करेंगे तो और ऋण चढ़ जाएगा। इसीलिए क्या होगा, ऋण चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा, और ऋण के जो क्या, ऋण के पहाड़ में दबके भगवान के चरणों में वास्तव में स्थान प्राप्त करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं हमको ये सुविधा मिलना चाहिए, है ना, हमें ऐसा होना चाहिए। तुम सड़क पर पड़े हुए थे, तुमको जॉब दिया और तुम अभी डिमांड कर रहे हो कि ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, अच्छा केबिन होना चाहिए, वो होना चाहिए, तुम पहले देखो कहाँ पर थे, है ना, तो भक्ति में आने से पहले क्या स्थिति था और आज क्या है, वो ना देख कर, किसकी कृपा से आए हैं वो ना देख के हमको मिलना चाहिए, हमको हमारा ये होना चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए, हमारा पूजा लाभ प्रतिष्ठा होना चाहिए। हम क्यों क्यों ये चीज भूल गए, जो ऋण है वो भूल गए, है ना। तो ये जो दीर्घ दृश्य विचार है, दीर्घ दृश्य विचार, दीर्घ और दृश्य, तो इसमें तीन शब्द आते हैं, दृष्टा और दृश्य। तो दृष्टा का अर्थ क्या है, दृष्टा मतलब देखने वाला, और दृश्य मतलब जो देखा जा रहा है, है ना। जैसे हमारी इंद्रियां हैं, आंखें हैं, हम उससे कुछ चीज को देख रहे हैं, है ना, तो हम क्या है, दृष्टा है, और जिस चीज को देख रहे हैं वो क्या है, दृश्य है, तो हम क्या है, सीयर, और जिस चीज को देख रहे हैं वो क्या है, सीन, है ना। और जिस चीज से देखा जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, हम देख किससे रहे हैं, आंखों से, तो आंखों, आंखें क्या है, हम बोलते हैं आई साइट, है ना, देखने का उपकरण, देखने का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर मतलब 99.99% लोग जो हैं, अपने आप को दृष्टा समझते हैं और संसार की हर वस्तु को क्या समझते हैं, दृश्य, और उसमें भगवान की भक्ति भी शामिल है और स्वयं भगवान शामिल है, कि मैं दृष्टा हूं और भगवान, भगवान के भक्त, ये सारी सृष्टि वो क्या है, दृश्य है, है ना। हम देखते हैं, ए भोगी कंसीडर्स हिमसेल्फ दृष्टा एंड एवरीथिंग एल्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम लॉर्ड टू बी दृश्य, हिज ऑब्जेक्ट ऑफ विजन। तो एक भोगी है, अपने आप को दृष्टा समझता है और उसके आसपास जितनी भी चीजें हैं जिसमें भगवान भी शामिल है उसको क्या समझता है, दृश्य। ड्यू टू देयर बिटर एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्ल्ड, सो कॉल्ड रिनाउंसर विश टू डिनाई द प्लूरलिटी ऑफ दृष्टा, दृश्य एंड दर्शन। तो जब इन भोगियों को इस भौतिक जगत में निराशा मिलती है, हताशा मिलती है, तो ये दृश्य, दृष्टा और दर्शन इनको एक करना चाहते हैं, ये सब एक है, दृष्टा और दृश्य और दर्शन जो देख रहे हैं वो सब एक है। एंड दस रिगार्ड देम एज वन, ओनली डिवोटीज हैव द प्रॉपर विजन टू अप्रिशिएट दैट कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर एंड अलोन इज फुली इंडिपेंडेंट एंड नो वन सर्वेंट, बट बिंग दृष्टा शुड बी सर्व बाई ऑल फॉर द जीवास एंड ऑल एल्स दैट वी आर दृश्य द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज दर्शन। तो कृष्ण जो है अभिज्ञ स्वराट है, स्वतंत्र है, परम भोक्ता है, वो दृष्टा है, और हम सब क्या है, दृश्य है, जिनको भगवान देख रहे हैं, या जिनको भगवान, हम सब देख रहे हैं, और हम सब भगवान की क्या है, भोग की सामग्री है। जब हम दृष्टा हैं और किसी दूसरे को देख रहे हैं तो हम क्या समझ रहे हैं, मैं भोगता हूं और सामने वाला क्या है, भोग्य है, भोग की सामग्री। लेकिन जब हम अपनी चेतना को बदल रहे हैं कि भगवान क्या है, दृष्टा है, भगवान परम भोक्ता है, और हम क्या है, दृश्य है, भोग की सामग्री है, तो हमारी चेतना क्या होगी, बदल जाएगी, है ना। और देखते हैं, जिसको सरस्वती ठाकुर बोलते थे गोलोक दर्शन और जगत दर्शन। गोलोक दर्शन में क्या है, कृष्ण केंद्र में है और कृष्ण सबको देख रहे हैं और सारे जीव कृष्ण के भोग के लिए निमित्त है। और जगत दर्शन में क्या है, मैं केंद्र में हूं, मैं सारे संसार को देख रहा हूं और सब कुछ मेरे अनुसार चलना चाहिए, ये सब कुछ मेरी सेवा में लगना चाहिए, तो इसको बोलते हैं जगत दर्शन। तो सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि अगर ये जो दृश्य, दीर्घ दृश्य विचार विकसित हो गया है, ये कृपा से प्राप्त हो गया है, तो हम इस भौतिक जगत में रहते हुए ही गोलोक दर्शन कर पाएंगे। गोलोक में सब कैसे दर्शन कर रहे हैं? कृष्ण भोक्ता है और सब भोग्य है, कृष्ण दृष्टा है और सब दृश्य है, ठीक है। फिर थिंकिंग हिमसेल्फ द सीयर ही सीज द वर्ल्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज एंजॉयमेंट। तो अगर हम अपने आप को दृष्टा समझ रहे हैं कि हम दृष्टा हैं, हम देखने वाले हैं, तो हम क्या समझेंगे? संसार मेरे भोग के लिए है, संसार की सारी चीजें मेरे भोग के लिए है। बट थिंकिंग हिमसेल्फ द एंजॉयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉल्स ईगो विल रिजल्ट ओनली इन हिज मिसफॉर्च्यून। तो अगर आप अपने आप को दृष्टा समझ रहा है, भोक्ता समझ रहा है, तो अंततः क्या होगा? उसका दुर्भाग्य होने वाला है, है ना। रिजेक्टिंग दैट आउटलुक, इस चीज को हमको अभी छोड़ देना कि मैं दृष्टा हूं, एंड इंस्टेड सीइंग द वर्ल्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ कृष्णास एंजॉयमेंट, सीइंग इट एज कृष्णास वर्ल्ड और गोकुल इज द जीवास गुड फॉर्च्यून एंड सेटिस्फाई कृष्णास सेंसेस। आई एम नॉट द सीयर बट रेदर आई एम सीन बाई कृष्णा, आई एम नॉट द एंजॉयर बट द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट फॉर कृष्णा, है ना। तो ये जो विचार है कि मैं दृष्टा हूं, मैं भोक्ता हूं, उसको छोड़कर ये समझना कि कृष्ण दृष्टा है, कृष्ण भोक्ता है, मैं भी उनका एक भोग का वस्तु हूं, है ना। तो इसको बोलते हैं गोलोक दर्शन या गोकुल दर्शन, है ना। अभी वो उदाहरण बता रहे हैं सरस्वती ठाकुर। हिरण्यकश्यपु थॉट ही वॉज द सीयर ऑफ द पिलर इन हिज हॉल। तो हिरण्यकश्यपु ने क्या सोचा कि मैं इस हॉल में जो पिलर है उसका क्या हूं? दृष्टा हूं। एंड डिजायर टू ऑब्जर्व द एग्जिस्टेंस ऑफ विष्णु, और क्या देखना चाहता था कि विष्णु है कि नहीं है, बताओ दिखाओ इस पिलर में विष्णु है कि नहीं। और टू मेजर विष्णु, अपने इंद्रियों के द्वारा वो जानना चाह रहा है कि विष्णु है कि नहीं। एंड एट जजिंग हिमसेल्फ द एंजॉयर परसीव्ड प्रहलाद एज हिज सन द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज एंजॉयमेंट। तो विष्णु और प्रहलाद, पूरा राज उसके भोग के लिए बना। अगर विष्णु भी है और उनका उसका पुत्र भी है प्रहलाद, तो वो मेरे भोग के लिए। बट द लॉर्ड ऑफ इनकंसीवेबल पावर्स रिवील्ड हिज इनकंसीवेबल इटर्नल फॉर्म टू हिरण्यकश्यपु एंड डिस्ट्रॉयड दैट सीयर। तो जो हिरण्यकश्यप नृसिंहदेव प्रकट हुए अपनी अचिंत्य शक्ति से, वो जो दृष्टा है, जो अपने आप को दृष्टा सोच रहा था, उस हिरण्यकश्यपु को मार दिया। और फिर एंड वॉज वेरी मर्सीफुल टू प्रहलाद हु रिगार्डेड हिमसेल्फ एज द ऑब्जेक्ट टू बी सीन और एंजॉय बाय विष्णु। प्रहलाद कैसे देख रहे थे कि मैं क्या हूं? दृश्य हूं, है ना, मैं भगवान के द्वारा भोगने योग्य हूं, भगवान के द्वारा देखने योग्य हूं, है ना। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आगे हम देखेंगे, तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? जैसे सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो। जैसे बहुत सुंदर यहां पर है, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था वेणु और बपू। वेणु और बपू, वेणु मतलब बांसुरी और बपू मतलब शरीर। तो वो बता रहे हैं कि सब कृष्ण का बपू देखना चाहते हैं, वेणु कोई नहीं सुनना चाहता। सब कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जो वेणु से उनकी जो शास्त्रों के आदेश आ रहे हैं, उनको कोई सुनना नहीं चाहता। तो बता रहे हैं, डोंट ट्राई टू सी गॉड बट ट्राई टू एक्ट इन सच ए वे दैट ही विल वॉन्ट टू सी यू, है ना। कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, कुछ ऐसा करो कि भगवान तुम्हें देखे। फिर बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान को देखना चाहता है, तो वास्तव में जो कृष्ण की जो वेणु है, उसकी जो मधुरता है, उससे वे अभी तक आकर्षित नहीं हुआ। तो बोलना है कि जो वास्तव में भगवान को देखना चाहता है, वो गुरु से क्या निवेदन करेगा? बट दोज who genuinely want to serve the form of Godhead request a guru. Guru se kya nivedan karenge? By your instruction please correct and purify me. Ki guru, gurudev aap apne upadeshon ke dwara mujhe mere sudhar kijiye, mujhe shuddh kijiye, and give me eyes by which I may actually see God. और मुझे आप आंखें दीजिए जिससे वास्तव में कृष्ण के दर्शन कर पाऊं, है ना? गॉड हेड मस्ट बी सीन फर्स्ट थ्रू द ईयर्स. तो भगवान सबसे पहले किससे दिखाई देते हैं? कानों से. फर्स्ट वाणी देन बपू. पहले वाणी फिर बपू. द ईयर्स प्रिपेयर द आईज. जो कान है किसको तैयार करते हैं? आंखों को, है ना? तो भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसा करो कि भगवान देखे, है ना? जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एक कंपनी है और कंपनी में सीईओ है, एक हेड है, और उसमें कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, 10,000 एम्प्लॉयज हैं, 10,000 सेवक, और उसमें से कोई व्यक्ति है जो मालिक को देखना चाहता है. वो निकलेगा, मतलब ऑफिस से छूटेगा, कार में बैठेगा, तो थोड़ा सा गैप मिलेगा तो देखने का प्रयास करेगा, या कहीं ऑफिस से ऐसे झांक के देखने का प्रयास करेगा. नहीं, कितना भी प्रयास कर ले वो उसको देख नहीं पाएगा. देख नहीं पाएगा मतलब उससे मिल नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे पड़े हैं ऐसे, 10,000 एम्प्लॉयज हैं, उसको क्या मतलब, है ना? लेकिन अगर एम्प्लॉय वो मालिक की कंपनी को अपना समझे और दिन रात मेहनत करे, बीमार है तब भी मेहनत करे, परिवार में कोई भी समस्या है तब भी मेहनत करे, तो मालिक सोचेगा ये कौन है एम्प्लॉय, इसके घर में इतनी प्रॉब्लम है फिर भी ये कंपनी में जॉब कर रहा है, इसको इतनी तबीयत खराब है तब भी ये कोई छुट्टी नहीं मांग रहा है, तब भी ये कंपनी में आ रहा है, इससे मैं मिलने जाता हूँ, इसको मैं बोनस दूंगा या इसका मैं प्रमोशन करूंगा. अगर वो एम्प्लॉय स्वयं सोचे कि मालिक के पास जाऊंगा उससे मिलने, तो कभी नहीं मिल पाएगा. लेकिन अगर उसने जी जान से 24 घंटे पूरा मेहनत कर रहा है, कोई शारीरिक समस्या है, पारिवारिक समस्या, कुछ भी, फिर भी वो किया जा रहा है, तो मालिक सोचेगा ये मेरा कॉन्फिडेंशियल है ना, इसने वास्तव में जो मेरी कंपनी है उसको अपना समझा है, करेक्ट? तो उसी तरह अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की दर्शन करने सब आते हैं, है ना, लेकिन भगवान किसको देख के प्रसन्न होंगे? यही है दीर्घदृष्टि से विचार. हम सोचते हैं कि भगवान है, भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, भगवान बहुत बढ़िया है, लेकिन इतना गंदगी भरी है, भगवान को तो अच्छा ही लग रहा है. वो एम्प्लॉय कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, टाइम पे आ भी नहीं रहा है, और मालिक के सामने आके खड़ा हो गया, देखिए मेरी सूरत. तो मालिक क्या लगा रहे, कहां से आ गया, टाइम खराब कर ले, कहां कहां से आ जाते हैं ना, अरे काम करो पहले. तो ऐसे क्या है, भगवान कई बार होता है ऐसे, खासकर वृंदावन में भगवान के पट खुलते हैं, लोग ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ते हैं जैसे अल्टर के अंदर ही घुस जाएंगे. वो तो क्या रेलिंग लगी होती है इसीलिए घुसते नहीं तो बस पड़े तो अंदर ही घुस जाए. लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि भगवान किस चीज में भगवान प्रसन्न है. मैं भगवान के पास गया, हम किस लिए जा रहे हैं, हमें अच्छा लगेगा, भगवान कितने सुंदर है. लेकिन भगवान प्रसन्न है कि नहीं है? भगवान कब प्रसन्न होंगे? जब हम अच्छी तरह सेवा कर रहे हैं. शिल प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम के सामने खड़े हैं और हम जैसे उछलने कूदने वाले भक्त भी खड़े हैं, तो भगवान किससे प्रसन्न होंगे, किनसे प्रसन्न होंगे? शिल प्रभुपाद, प्रभुपाद जी के महान सन्यासी भक्त हैं, कोई भी जो प्रभुपाद जी को यथावत उसको पालन कर रहे हैं, है ना? तो हम भक्ति भी करते हैं किसके लिए? अपने सुख के लिए, कि मुझे सुख मिले. लेकिन सरस्वती ठाकुर क्या है, वो पूरी चेतना को क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं. एक्चुअली उसको समझना ही बहुत मुश्किल है, पालन करना तो बहुत दूर की बात है ना.